તારીખ 13-10-1994 શ્રી સમયસર કળશ ટીકા ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 95. મૂળ કેસેટમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે.
આત્મા કો જ્ઞાન કરના, આત્મા કો સ્વયં કા અનુભવ કરના, આત્મા મે નિર્ભર હોના, ઇસ લિયે કે બાત હૈ. સબ અલગ અલગ હૈ, કોઈ ચીજ પરિવાર કે હૈ, કોઈ વાચક શક્ય હૈ, ઇનકા વાક્ય હૈ. प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को इस प्रकार से ग्रहण करना कि जो चेतने वाला है वो मुश्किल से नहीं हो, बाकी के जो भाव है निर्णय से डर है जानना. જ્ઞાન હોય મેં ચેતને વાળા આત્મા હું વર્તમાન ચેતન ભાવ કો અનુભવ લેકર કે સ્વયંભૂ અનુભવ લેકર કે અહંભાવ કરના યા અહમ બુદ્ધિ કરના બાકી કે જો ભાવ હે મેરે ચેતન કે ચેતન કો છોડ કરકે
તેને ઉસમેં
નહીં ભાગ હે. સિવાય ચેતન જે ભી જિસ પ્રકાર સે ભાવ હો તો મેરે લીએ અન્ય હૈ, પર હૈ માને અન્ય હૈ જાનના. ભાવ મે અપનત્વ હોતા તો અપનત્વ નિર્ણય કરના તો નાસ્ત છે, નાસ્તિ ટીકા કે વિસ્તાર હૈ. ટીકા સંરક્ષણ કો અનુભવને વાલી પ્રજ્ઞા દ્વારા યોગા યોગા કરને મેં આયા હૈ એસા જો ચેતક મેં હું મેં હું જો ચેતને વાલા હૈ મેં હું ઓર અન્ય સ્વલક્ષણો સે લક્ષ્ય અર્થાત ચૈતન્ય લક્ષણો સિવા દૂસરે લક્ષણો સે પહેચાન દે બાકી કે વ્યવહારિક ભાવ હૈ. વ્યવહારિક ભાવ મને જે વિશ્વ ભાવ હૈ મને આત્મા કા વિકલ્પ હોય યા દે શાસ્ત્ર કા વિકલ્પ હોય એ સબ ચેતક પણા રૂપી વ્યાપક વ્યાપક નહીં હોને છે, નહીં હોતે હોને મેરે સે અત્યંત ભિન્ન હૈ, થોડા ભિન્ન નહીં હૈ, મેરે સે અત્યંત ભિન્ન હૈ, યાને મેરે સે સર્વથા ભિન્ન હૈ. જીતને ભી શુદ્ધ ભાવ હૈ તો સભી શુદ્ધ ભાવ આ પિતા મેં ક્યાં વિસ્તાર કર્યા આગે બાદ લીધા હતા નિયત સ્વરક્ષણ કો અવલંબને વાળી પ્રજ્ઞા દ્વારા પ્રયોગ થી પરિભાષા હૈ. અવલંબન કરના એ પ્રયોગ હૈ. કિસ તરહ સે વો પ્રયોગ ચલતા હૈ से जो प्रक्रिया है उसका खास लक्षण है, वेदन उसका खास लक्षण है, व्याकुल बोला है, तो उस लक्षण को अवलंबन करके प्रज्ञा द्वारा जुदा करने में आया ऐसा चेतने वाला आत्मा है। लक्षण है लक्ष्य को ग्रहण कर लेना, चैतन्य चिन्ह है मैं चैतन्य वाला चेतक हूं ऐसा पूरा वस्तु को ग्रहण कर लेना। लक्षण है वो तो एक कुटीर स्पेस है, पैर रखने की जगह है, तो जैसा चेतन हमको पैर रखने की जगह दोनों रखने मानव पत्र बैठते हैं देख लो, ऐसा वो चैतन्य चिन्ह है, चैतन्य लक्षण है, वहां से पूरा चेतन पदार्थ को अपने रूप में ग्रहण किया जाता है। मैं ये ऐसा चेतन लक्षण को हो ज्ञान लक्षण को, लक्षण तो एक ही प्रकार का है, नाम उसका अनेक है। वेदन लक्षण को हो ज्ञान लक्षण को हो चैतन्य लक्षण को हो एक ही बात है, उसका वाच्य कोई अलग अलग नहीं, वाच्य को जो लक्षण चिन्ह है वो एक ही है, और ये संवेदन से उसका प्रसिद्ध पड़ा, वह संवेदन से उसका प्रसिद्ध पड़ा मालूम पड़ता है, इसका प्रगत पड़ा मालूम पड़ता है, उसका नियत सेवा दूसरे प्रकार से मालूम नहीं पड़ता।
उसका नियत लक्षण स्वयं संवेदन ही है,
नियत लक्षण है,
नियत लक्षण स्वयं संवेदन ही है,
स्वसंवेदन नियत माने तीनों का यही एक लक्षण है, दूसरा कोई लक्षण नहीं है। भूतकाल में कोई दूसरे प्रकार से अनुभव किया गया हो, भविष्य में कोई दूसरे प्रकार से होगा ऐसा नहीं है। जैसे मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग नियत है क्या, वैसे इस मोक्ष मार्ग को पाने की विधि भी नियत है, इसके लक्षण भी नियत है, विदा करने की पद्धति वेद ज्ञान की भी नियत है, अलग अलग प्रकार से नहीं है, क्योंकि ये वस्तु का विज्ञान है, तो विज्ञान में कोई काल में से पास नहीं होता है। ज्ञानी के पास तो वेद ज्ञान की ज्ञान कला है, तो वो तो प्रभावों को भिन्न करके अपने स्वरूप को अनुभव करता है, मुक्ति क्या करे वो प्रश्न है। ज्ञानी के पास तो ज्ञान कला है, मुक्ति के पास ऐसी कोई कला है क्या, ये सवाल है। मुमुक्षु के पास उसको भक्ति कहेंगे तो राग में ले जाएंगे, इसलिए भक्ति कला वो ज्ञान कला है, उसकी भक्ति कला वो ज्ञान कला है, इसके ज्ञान पर महात्मा की भी करे और ज्ञानी की भी करे। तीन सौ चौरानवे ऐसे अर्थ से भरे हुए ये दो पद है, तो ऐसा भी जैसे का पद ध्यान मन महिला में वाला उतरे बीजा काम करण करे, तेन श्रुत धर्म में मन जड़ रहे इनाम इसे को प्रबंध करे विकास करते हैं कि ऐसे अर्थ से भरे हुए ये द्विपद है, ये पद तो भक्ति प्रधान है, क्या है भक्ति प्रधान पद है, तथापि उस प्रकार से द्विज आशय में जीव का निधिध्यासन यदि न हो तो उचित अन्य ऐसा पद नाम प्रधान जैसा बातें करता है। ज्ञान क्षेत्र को बंद करे तो ज्ञान प्रधान भाषित होता है और आपको भाषित होगा और हम आपको ज्ञान प्रधान में ले जाना चाहते नहीं है। क्या ट्रीटमेंट है इसमें? एक पद में एक पंक्ति भक्ति प्रधान है, दूसरी पंक्ति ज्ञान प्रधान है, तो वैसे तो आप पूरा पद भक्ति प्रधान है, वैसे तो पूरा पद भक्ति प्रधान है, लेकिन दूसरा पद में आपको ज्ञान प्रधानता भाषित होगी ऐसा जानकर दूसरे पद का वैसा भाव साधित करने के लिए, तो ज्ञान प्रधानता को तोड़ने के लिए पत्र पूर्ण करते हुए फिर मात्र प्रथम का एक ही पद लिखकर प्रधान रूप से भक्ति को बताया है। ज्ञान को नहीं बताया, भक्ति को बताया है, इसलिए पत्र पूर्ण करने में हमने दो चरण नहीं लिखे, एक ही चरण लिखे।
भक्ति करने का उद्देश्य क्या
जी?
भक्ति करने का उद्देश्य क्या है?
भक्ति करने
का पीछा उद्देश्य क्या है उसका उद्देश्य?
हाँ, उद्देश्य है अपना कल्याण करने का। भक्ति करने के पीछे उद्देश्य क्या है? अपना आत्मकल्याण करने का।
तभी स्वतंत्रता उसने छोड़ दी, स्वयं की स्वतंत्रता को भूल गया और उस पर भक्ति करने लगे। स्वयं जो सत वस्तु है, स्वयं सत वस्तु है, जो स्वतंत्र है, अनाज निधन है, वो अपने को भूल करके दूसरा का आश्रय लेने लगे।
ऐसा है कि हमारा जरा पहला ऊंडा था, क्या हमारा घड़ा पहले ऊंधा पड़ा था, अब हमें सीधा तो करना है, तो आगे हुए बिना सीधा कैसा होगा? कोई ऐसी कोई व्यवस्था जगत में है क्या कि ऊंधा पड़ा हुआ घड़ा आगा हुए बिना सीधा हो जाए? कोई ऐसा मैकेनिज्म है क्या? नहीं है। तो पहले ऊंधे घड़े को आधा होना पड़ेगा, फिर वो सीधा होगा और पानी भरेगा। ऊंधे घड़े में पानी भरा जाता नहीं है। ऐसे जिसको कल्याण करना है उसको ज्ञानी की भक्ति, ज्ञानी को पहचान कर आए बिना, अपने आत्मा की पहचान होकर अपने आत्मा की बहुमान आएगी नहीं, कभी दिन काल में नहीं आएगी। एक वस्तु स्थिति है, जैसे घड़ा आड़ा होता है, एक वस्तु स्थिति है, उसको मिटाई नहीं जाती, उसको दूर नहीं कर सकते, इस तरह से इन परिस्थिति को दूर नहीं कर सकते। और हमारा ध्यान हमारे आत्मा पर गया है विकल्प रूप से, तो संज्ञा से, लेकिन इस बात पर हमारा ध्यान नहीं गया, यानी कि पहचान होना और पहचान होने के बाद ही आत्मा की पहचान होती है, इस बात पर हमारा ध्यान नहीं गया। अनंत काल में ये एक ही जगह भूल वाली हुई है, इस जगह भूला है, अगर इस जगह नहीं भूला तो उसका निबड़ा हो जाता है। तो बात है भक्ति प्रधान दशा में रहने से जीव के स्वच्छता भी दोष सुगमता से मिले होते हैं। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का प्रधान आते हैं, मुख्य आते हैं, भक्ति के पीछे क्या आते हैं कि जीव का स्वच्छंद रूप के जोर से मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, तो जो स्वच्छंद है वो स्वच्छंद मिले होना, इसका एक सुगम से सुगम उपाय, सरल से सरल उपाय, तो भक्ति प्रधानता में आ जाए। यदि जीव में अल्प भी निष्काम भक्ति उत्पन्न हुई, क्या यदि जीव में अल्प भी निष्काम भक्ति उत्पन्न हुई होती है तो वह अनेक दोषों से निवृत्त करने के लिए योग्य होती है। कैसी भक्ति चाहिए? निष्काम भक्ति, निर्व्याज भक्ति, इससे बदले कुछ नहीं चाहिए हमें, भक्ति के बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, आत्मकल्याण सहज होगा। भक्ति के बदले में समीर दर्शन तो चाहिए क्या नहीं? तो क्या हम सौदाबाजी करके आए हैं इधर कि हम आपको उतना देंगे, आप हमको कितना देंगे? हम तो आपको उतनी भक्ति करते हैं कि इसके सामने हम आप हमको क्या देंगे, ये बताओ। बाद में भक्ति करेंगे, पहले नहीं करेंगे, बदले लोग हैं। तो निष्काम भक्ति, तो भक्ति करने वाला अच्छी तरह जानता है कि मेरा कल्याण कैसे हो तो मैं नहीं जानता। क्या मेरा कल्याण कैसे हो सकता है वो मैं नहीं जानता, अगर जानता तो मैं कर लेता ना। ये तो ज्ञानी पुरुष के लक्ष्य में है, इसलिए मुझे सर्व प्रकार के स्वच्छंद को छोड़ करके किसके चरण में जाना है। डॉक्टर के पास सरेंडर होता है कि नहीं? इंसेंटिव क्यों के क्योर में ले जाता है तो क्या होता है? सरेंडर होकर के जाता है कि नहीं होता है? हाँ, कुछ चलती है क्या उसमें? अपना वहाँ इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, वहाँ स्वतंत्रता नहीं रहेगी, क्योंकि रोग मिटाने की गरज है हमें शरीर के। यहाँ आपको रोग मिटाने की एक बात तो गरज में आ जाए तो मुझे मेरा आपको रोग निकालना है, मैं नहीं जानता कैसे निकाला जाता है, मैं नहीं जानता। चलो कुछ नहीं मांगे तो ज्ञानी पुरुष के लक्ष्य में होती है बात। हाँ, तो सुनना ना पड़ेगा। कैंसर हुआ हो तो सिगरेट पीना की सिगरेट पीने की आदत बन गई हो तो डॉक्टर कहेंगे तुम गड्ढे हो, गड्ढे भी कहेंगे, मूर्ख भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, वो क्या करते हो? ठीक है, गरज है तो सुनना पड़ेगा, मान सम्मान का यहाँ प्रॉब्लम नहीं चल सकता। मान सम्मान का प्रॉब्लम वहां नहीं चल सकता। वैकल्पिक होने वहां सब छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर क्या, डॉक्टर की नर्स जो बोल के जाकर ये जो कहेगी वो तुमको करना पड़ेगा सारे दिन, 24 घंटे तुम्हारे माथे खड़े रहेंगे, और वो जो कहेगी वो तुमको करना पड़ेगा, मैं तुम उधर चला जाऊंगा। तो उसके नीचे जो है उसका असिस्टेंट है, जरूरी है, उसके उसको कहने का करना पड़ेगा, क्योंकि एक मरण से बचना है, अनंत जन्म मरण से बचना है, इसके लिए अनंत की गरज चाहिए। कितनी? इससे भी अनंत चाहिए। फिर कोई आपत्ति नहीं है। ज्ञानी पुरुष भी उसको डूबने जाएगा तो भी डूबने देगा, हाथ पकड़ करके खींच के बाहर ले आएंगे ऐसी ताकत है। सभी ज्ञानियों की, सभी आचार्यों की, सभी उत्तम प्रति मनुष्यों की निष्काम भक्ति ही होती है। दोनों की कभी कभी सकाम भक्ति नहीं होती, क्योंकि उनको कोई कामना है ही नहीं, उनको कोई कामना है नहीं, फिर वो जो कहे वो सही है। हमें किसी के शब्द से, वचन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि इधर क्यों कहा, उधर ऐसा क्यों कहा, क्यों कि हम अच्छी तरह पहचानते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, जो आचार्य होते हैं, मुनि होते हैं, उत्तम बुद्धि के मुमुक्ष होते हैं, उनकी भक्ति निष्काम ही होती है, उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, शंका करने की जगह ही नहीं है। सब घरी भक्ति प्रकट होती है, भक्तिमान की भक्ति प्रकट होती है तब खरी भक्ति प्रकट होती है। और इस भक्तिमान की भक्ति करने वाले की भक्ति जिस ज्ञानी पुरुष को होती है, फिर भी उनको रंच मात्र मान सम्मान का विकल्प नहीं होता है। ऐसी दशा जहां तक नहीं आए वहां तक किसी को उपदेश नहीं देना, गुरु पद में नहीं बैठना। एक पत्र में आया है, ज्ञानी कितने विनम्र होते हैं और ज्ञानी के मुमुक्ष कितने विनम्र होते हैं, दोनों बात उसमें आ जाती है। कितना लिखने में कितना सामर्थ्य है, यदि जीव में अल्प भी निष्काम भक्ति उत्पन्न हुई होती है तो वह अनेक दोषों से निवृत्त करना करने के लिए योग्य होती है, परंतु अल्प ज्ञान होता है अथवा ज्ञान प्रधान दशा शास्त्र पढ़ना भक्ति पहचान से बहुमान नहीं आवे और अकेले ज्ञान की मुख्यता से, ज्ञान की मेरे बुद्धि की प्रधानता की मुख्यता से और सुगम मार्ग के प्रति क्या तो ले जाता है, क्या ले कहां ले जाता है, और सुगम मार्ग के प्रति वो उलझन में आ जाएगा, सुगम मार्ग उसको नहीं मिलेगा। स्वच्छता के जोश के प्रति ले जाएगा वो तो प्रकार, अथवा पदार्थ संबंधी मैंने आत्मा संबंधी भ्रांति के प्रति तो ले जाता है। बहुत करके ऐसा ही होता है, ज्यादा करके ऐसा हो जाता है। उसमें भी इस काल में तो ये परिस्थिति जो है, 100 साल पहले की बात करते हो, अभी तो बहुत बिगड़ी हुई है परिस्थिति, उसमें भी इस काल में तो बहुत काल तक जीवन पर्यंत भी जीव को भक्ति प्रधान दशा की आराधना करना योग्य है। मैंने भक्ति प्रधान का छोड़ दिए नहीं है, भले ही हमारी दशा में निर्मलता आ जाए, आगे पदार्थ निर्णय हो जाए, अरे ज्ञान दशा हो जाए तो भी ऐसा कहते हैं। कैसा निश्चय ज्ञानियों ने किया, ज्ञान होता है वह ऐसा लगता है और ऐसा ही है। तो उतनी बात है उसे हाँ 213 में उनको गजब की बात लिखा है। उसमें तो ज्ञान को उतने आगे रखे हैं, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिनो सुधार, वो बात जो आत्मसिद्धि 30 साल की उम्र में लिखे, वो बात 2 साल की उम्र में इधर लिखी है 213 में, वो बहुत रहस्यपूर्ण विषय रहा हमेशा। बहुत बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि आत्मकल्याण के लिए लगन लगनी, छटपटाहट लगनी, तीव्र कितनी तीव्र, कि आत्मकल्याण नहीं हो जाए तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए, ऐसे दिशा में सुधा निधि आए थे। फिर भी गुरुदेव को नहीं मिले वहां तक ज्ञान दशा की प्राप्ति नहीं हुई, गुरुदेव जब मिले तब ज्ञान दशा की उसको प्राप्ति हुई। देखो क्या हालत है, पुनः मतलब पात्रता चरम सीमा में आ गई, इससे आगे कोई पात्रता नहीं है, कि आत्मकल्याण न हो तो फिर जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। खाना पीना नींद लेना तो हराम हो ही गया था, क्या नींद नहीं आती थी रात को, सब तो चक्कर लगाते थे सारी रात, इधर से उधर इधर से उधर, उतनी पात्र सारी मार्ग नहीं मिलता था, संस्कार यदि होते तो अंदर से मार्ग मिल जाता, शास्त्र के एक वचन को पढ़ करके मार्ग मिल जाता, वो तो संस्कार नहीं थे। ज्ञानी का मिलना जरूरी है, कुदरत ने क्या व्यवस्था बिठाई, हिंदी आत्मधर्म उसी साल में 2000 के साल में प्रकाशित हुआ, 2002 में करीब, 2002 में, और ऐसे प्रचार का अर्थ जो फ्री भेजा जाता था उसमें एक निकल उनके वहां पहुंच गई, देखा हो कोई रास्ता मिलेगा तो यहां से मिल सकता है, ऐसा एक आशा आया, तो गुरुदेव के चित्रपट को अर्घ चढ़ाया, क्या किया, आत्मधर्म में अंकित गुरुदेव का चित्रपट है उनको चंदन अर्घ चढ़ाया, चित्रपट को अर्घ चढ़ाया, तो सौंदर्य चले गए, और एक रात में अनंत भव का बंधन तोड़ दिया, एक ही रात एक ही 24 घंटे में चले चले, क्योंकि पात्रता चरम सीमा थी। गुरुदेव को देखा कि ज्ञान और राग जुदा है, ऐसा कहते नहीं है, ऐसा परिणमन करके दिखाते हैं, दिखाते दिखाते बोलते हैं, कहकर के नहीं दिखाते, दिखाते हुए बोलते हैं, बस ये जो ज्ञान संवेदन है वो तो आत्मा के स्वसंवेदन को उजागर कर देता है, देखने से परिणमन देखने से जो बोध होता है, परिणमन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि परिणमन को देखते जो परिणमन होता है वो तो शास्त्र पढ़ने से सुनने से नहीं होता है, इसलिए भगवान की प्रतिमा का स्थापना है, ये परिणमित है, क्या है कि भगवान परिणमन कर रहे हैं शुद्ध दशा में, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अंतर्मुखता का परिणमन चल रहा है, संवेदन का परिणमन चलता है, देखने वाले को परिणमन हो सकता है, नजर चाहिए, हाँ ज्ञानी है तो जीवंत स्वामी है, क्या तो मयाना में प्रतिमा है समुद्र भगवान की, 700 वर्ष पुरानी है, बयान है। तो स्वर्गन में सुरेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा हुई तो निकुंदर संप्रदाय में थोड़ा विरोध भी हुआ कि 24 तीर्थंकर को छोड़ करके दो तीर्थंकर सिद्धालय में चले गए, उनकी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कि नई प्रणाली का जो सौंदर्य वाले कर रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। कुछ विरोध भी हुआ लेकिन स्थापना तो की, क्योंकि स्थापना तो भूतकाल की भी होती है, वर्तमान होते उसके होते और भविष्य में होने वाले उसके भी होते हैं। चलो की स्थापना आनंद सम्मत है, ज्ञानियों ने की भी है, भरत चक्रवर्ती ने भी की थी 300। तो सुरेंद्र भगवान की स्थापना किया गुरुदेव ने, इसलिए कि पूर्व गुरु में तो उपकार थे, संस्कार थे लेने। बात तो बन चुकी 2013 के साल में यहाँ चंद्रशेखर की यात्रा में चले तो बयाना में मंदिर में एक शिव मंदिर स्वामी के जो प्रतिमा थी उसमें प्रशस्ति में ऐसा लिखा था। क्या लिखा था? जीवंत स्वामी सुरेंद्र भगवान 1008 जिस साल में प्रतिष्ठा होती है उस साल लिखी जाती है, 700 साल पहले की बात है। जैसे ज्ञानी है तो जीवंत जीव प्रतिमा है, इसलिए उसको जीवंत स्वामी बोलने में आता है। ये नियत स्वलक्षण को सब पहचाने, ज्ञानी को पहचाने, सब पहचाने, इसके पहले पहचाना सकती नहीं है। इसका क्रम है, क्रम छोड़ के अगर कोई काम करने को जाएगा कितना भी बुद्धिमान हो, हलवा दूसरी तरह से बनता नहीं है। कोई कितना भी बुद्धिमान हो तो उसमें ढंग से काम होगा। नियत स्वलक्षण को अवलंबने वाली प्रज्ञा के द्वारा भिन्न करने में आया जो चेतन, यही मैं हूं, इस प्रकार का वहां प्रेरण बन गया है। चैतन्य लक्षण को अवलंबन करके यहां से सरकता है, अवलंबन का परिणाम यहां से सरकता है और जो चेतक द्रव्य स्वभाव है उसका अवलंबन ले लेता है। और अवलंबन लेने में जो भाव चलता है, परिणमन चलता है, मैं यह हूं, ऐसा परिणमन आता है, ऐसा विकल्प नहीं। क्या? मैं यह हूं ऐसा विकल्प नहीं, ऐसा परिणमन आता है अपने आप में।
नियत स्वलक्षण है ये, नियत स्वलक्षण है,
चैतन्य है वो नियत स्वलक्षण है। कोई लक्षण को बदले ऐसा हमारे यहाँ विद्वानों में मतांतर भी है कि देखिए हमको तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, पहले तो सम्यक दर्शन चाहिए, बाद में सम्यक ज्ञान है, बाद में सम्यक चारित्र है। इसलिए सम्यक दर्शन का कार्य तो निज सत्ता का अवलंबन करना उतना ही है, चैतन्य सत्ता का अवलंबन करना, अस्तित्व ग्रहण करना इतना ही कार्य है। तो हम अस्तित्व लक्षण से आत्मा को ग्रहण करेंगे क्या? ऐसा भी चलता है अस्तित्व लक्षण से आत्मा को ग्रहण करें? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अस्तित्व आत्मा में भी है, अस्तित्व अन्य पदार्थ में भी है, भिन्नत्व कैसे होगा?
स्वरूप
अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व। तो अस्तित्व तो छह पदार्थ में सामान्य है, अन्य द्रव्य में, अन्य भाव में अस्तित्व तो है, भिन्न अस्तित्व कहां से पकड़ने में आएगा? कि चैतन्य चिन्ह से, एक चैतन्य चेतना लक्षण ऐसा है कि जिससे आत्मा भिन्न होता है, स्वरूप भिन्न हो सकता है, इसके पहले स्वरूप की भिन्नता नहीं हो सकती। तो जैसे उसको भिन्न किया और अन्य स्वलक्षणों से, अन्य मेरे राजादि का स्वलक्षणों से, राजा लक्ष्य ये बाकी के व्यवहार रूप भाव है, जितने भी व्यवहार रूप परिणाम है तो धर्म के परिणाम नहीं है, जितने भी व्यवहार रूप परिणाम है वो आत्मा के परिणाम न धर्म के है न धर्मी के भी है। इसलिए तो सभी को चेतक पड़ा रूपी व्यापक या व्यापक नहीं होने से, नहीं होते होने से, देखो इसमें हमारे आत्मा का व्यापक पड़ा ही नहीं है, इसलिए हमारा अस्तित्व वहां नहीं है। जहाँ व्यापकता होती है वहां अस्तित्व होता है, जहाँ व्यापकता होती है वहां कर्तापना होता है, जहाँ व्यापकता होती है वहां भोक्तापना होता है, कुछ नहीं है। चेतपना रूपी व्यापकता व्यापक व्याप्य नहीं होते होने से मेरे से अत्यंत भिन्न है, ये व्यवहार परिणाम है वो मेरे से अत्यंत भिन्न है ऐसा जानने में आता है। जो परिणाम अपने से अत्यंत भिन्न हो, ऐसे जो व्यवहार परिणाम, उसकी मदद से कोई कार्य हो सकता है क्या? इसकी मदद से कोई कार्य हो सकता है क्या? इसकी मदद से कोई कार्य हो सकता? जिससे अत्यंत भिन्नता होती है, जिस भाव से अत्यंत भिन्नता अनुभव में आती है, उसको साथ में लेकर के हम काम करेंगे कि उसको अलग करके काम करेंगे? क्या फर्क ये व्यवहार परिणाम उत्कृष्ट कोटि कोटि के शुभ भाव है। ज्ञानी के भी जो व्यवहार परिणाम है वो उच्च कोटि के शुभ भाव है, उच्च कोटि के मुमुक्षु के भी व्यवहार परिणाम है वो उच्च कोटि के शुभ भाव है। ज्ञानी और मुमुक्षु उनसे भिन्नता करके अपनी साधना करते हैं, उनको पकड़ करके साधना नहीं करते, मोक्ष की साधना ऐसे होती है।
उनको अपना नियत लक्षण नहीं मानता, उन शुभ भावों को अपना नियत लक्षण नहीं मानता,
नहीं अपने से विरुद्ध है, अपने से विरुद्ध है और अपना अस्तित्व ही वहां नहीं है, इसमें अपना लक्षण कैसे हो सकता है? ते शुभा शुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव, शुभ और अशुभ का छेद करने से, भिन्न करने से मोक्ष का स्वभाव उपजेगा, इसके पहले मोक्ष का स्वभाव नहीं उपज सकता। इसलिए जो अभिप्राय में उसको साथ में रखना मानता है तो मोक्ष का मार्ग को नहीं जानता। जो भी ये व्यवहार परिणाम को का साथ लेना चाहता है तो ऐसा जिसका अभिप्राय है, अभिप्राय मैंने मत है, तो जिन मत से विरुद्ध है, तो जिन मत नहीं है। जैसे बात बहुत अलग अलग बात है, शुभ का अवलंबन लेना वो विपर्यास है, और जहां तक पूर्ण वितरागता न हो वहां तक मोक्ष मार्गी धर्मात्मा को भी शुभ भाव आना ये संभवित दशा है, असंभव बात नहीं है। लेकिन ऐसा शुभ भाव से वो भिन्नता करते हैं, क्या जो अवलंबन लेते हैं वो अभिन्नता करते हैं, और जो भिन्नता करके करने के बाद भी आता है तो उसको भिन्नता ही करते रहता है। अवलंबन लेना वो विपर्यास है, भिन्नता करना वो अविपर्यास है, कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है, उल्टा सुल्टा अंतर है। आएगा तो फिर नहीं होगा वहां तक आएगा,
चैतन्य लक्षण से अतिरिक्त लक्षण है,
अतिरिक्त लक्षण
इसलिए जानने योग्य है,
जानने योग्य है, भिन्न भिन्न रूप से जानने योग्य है, उसका एक अंश एक कण भी अपने में मिलाना नहीं, ये बात है। पर एक अंश की मदद भी हमको साथ में लेना नहीं है, वरना भिन्नता नहीं कर पाएंगे।
वो मदद करेगा ही
नहीं, मदद करेगा। इसलिए मैं ही मेरे द्वारा ही देखो सत्कार उतारते हैं। एक कार्य संपन्न होते हैं तो कार्य करने का जो भी प्रकार है उसको कारक कहते हैं। कार्य करने के लिए जो जरूरी साधन है उसको कारक कहते हैं, कार्य करने वाला। तो एक कार्य में छह कारक होते हैं, कार्य का कर्ता, कार्य का कर्म, कार्य का साधन, कार्य किस में से आता है, कार्य को कौन ग्रहण करते प्राप्त करता है और किस आधार से होता है, ऐसे छह कारक होते हैं। जो व्याकरण पढ़े होंगे उसको विभक्ति मालूम होगी, कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान और अधिकरण, ये छह विभक्ति होती है। तो व्याकरण में सात विभक्ति होती है, संबंध छठी विभक्ति संबंध है, सातवीं अधिकरण है वहां, यह संबंध नहीं दिया है क्योंकि दो चीज नहीं है। इसलिए मैं हूं, मेरे मैं ही मेरे द्वारा ही मेरे लिए ही मेरे में से ही मेरे में ही मुझको ही ग्रहण करता हूँ। मैं अपने को ही ग्रहण करता हूँ, मेरे द्वारा ही ग्रहण करता हूँ, मेरे लिए ही ग्रहण करता हूँ, मेरे में से ग्रहण करता हूँ, मेरे में ही ग्रहण करता हूँ, ऐसा छह कारण मेरे में ये मेरा कार्य संपन्न होने में। इसलिए आत्म कार्य करने में भिन्न कारकों की अपेक्षा नहीं है। आत्मा की चेतना, चेतना ही एक क्रिया होने से, आत्मा की चेतना ही एक क्रिया होने से मैं ग्रहण करता हूँ। इसलिए मैं ही चेतता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को चेतता हूँ। वेद्य वेदक भाव से चेतता हूँ, मेरे वेदता हूँ, अनुभव करता हूँ। इस प्रकार से वेद्य वेदक भाव से वेदन करने वाला भी मैं वेदक, और वेदन में आने वाला भी मैं वेद्य वेदनीय। इस प्रकार से मैं अभेद रूप से अपने आप को चेतता हूँ। चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतता हुआ ही चेतता हूँ, और चेतता बड़े ही चेतता हूँ। जो चेतने वाला है उसके द्वारा ही चेतता हूँ, अन्य साधन के मुझे जरूरत नहीं है। और चेतन चेतता चेतता के लिए ही चेतता हूँ, दूसरा कोई कारण से नहीं चेतता हूँ, दूसरे के लिए नहीं, मेरे लिए ही चेतता हूँ, और चेतता में से ही चेतता हूँ, मेरे में ही मेरे में से ही वो कार्य अपने आप को मिलता है। और चेतन में ही चेतता हूँ अधिकरण स्थान मेरे में, मेरा स्थान मेरे में ही है, चेतने का मेरा स्थान मेरे में ही है, और चेतता को अपने आप को ही चेतता हूँ, दूसरे को नहीं चेतता हूँ, चेतता हूँ मैंने अनुभवता हूँ। अथवा पर को नहीं चेतता, नहीं चेतता हुआ नहीं चेतता, नहीं चेतता द्वारा चेतता, नहीं चेतता उनमें से चेतता, नहीं चेतता में से चेतता, नहीं चेतना में चेतता, नहीं चेतता को चेतता, परंतु सर्व विष्णु चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र भाव
पूरा स्वार्थी है, पूरा स्वार्थी हो गया,
पूरा स्वार्थी हो गया। अन्य का सौ प्रकार से निषेध किया, मात्र ऐसा विकल्प नहीं है, जो अनुभव में आने वाला पदार्थ है भाव, मैंने यह पदार्थ है भावात्मक पदार्थ, भावात्मक मूर्ति स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर जो पहला श्लोक दिया है कि नव समय साराय स्वानुभूत्या चकाशित, जो स्वानुभूति से प्रकाशमान होता है ऐसा समय सार को नव समय साराय कैसा है, तो चित्त स्वभाव आय भावाय जो चैतन्य स्वभाव वाला है पर भाव वाला है, अनंत भावों की मूर्ति है, कितने भाव भरे हैं चैतन्य में, भाव कितने भरे हैं अनंत अनंत भावों की मूर्ति है, भाव नाम की शक्ति है, भाव नाम की बहुत दो शक्ति है, दो तीन शक्ति है, अलग हरेक का स्पेसिफिक कार्य अलग अलग है, इसलिए नाम ये भी है। ऐसे चिन्ह मात्र भाव हो ऐसा नहीं है, चिन्ह मात्र हो ऐसा नहीं है, भाव प्रत्यक्ष है तो बहुत उसमें अनंत अनंत भाव भरे हुए हैं, अनंत भाव उसमें से निकलेंगे, फिर भी उसका भाव निकालने का सामर्थ्य कितना रहा, इंपैक्ट उतना ही उतना रहा, अनंत काल पीछे भी उतना ही, भाव आता है तो भाता है, क्या भाव आता है तो भाता है, और भाव आता है तो भावना होती है, विकल्प आता है तो बिल्कुल होता है, विकल्प से छक जाएगा, विकल्प में आकुलता हो जाएगी, ये विकल्प है तो भावात्मक भावात्मक मृत्यु जो चैतन्य अपना स्वरूप है उसकी वो चीज ही नहीं है, तो कोई पराई चीज है, पड़ोस में रहने वाली कोई पराई चीज है, वो अपनी चीज है ही नहीं, विकल्प का मूल्य कितना, शून्य, कोई विकल्प का मूल्य नहीं है, जबकि ज्ञान दशा में विकल्प का मूल्य भाषित होता है, देखो हमको ऐसा विकल्प हुआ, हमको ऐसा विकल्प आया, हमको ऐसा विकल्प आया, ये तेरी चीज नहीं है, तुम निर्विकल्प हो, सर्वथा निर्विकल्प हो, परिपूर्ण निर्विकल्प हो, विकल्प में और तेरे में कोट्यवधि योजन का अंतर है, कितना अंतर है, कोट्यवधि योजन का अंतर है, तुम विकल्प में कहीं नहीं हो, इसलिए विकल्प में अपनापन छोड़ दो, इसकी भ्रांति है, विकल्प में अपनापन होना यही भ्रांति है, इसलिए मुझे अच्छा विकल्प हुआ ये बात स्वप्न में भी लेने योग्य नहीं है, जहां तक जीव निर्विकल्प स्वरूप को जानता नहीं पहचानता नहीं वहां तक उसका वजन विकल्प पर चलता है, ये तो मुझे ऐसा विकल्प, मुझे आत्मा का विकल्प आता है, सारे दिन मुझे आत्मा का विकल्प आता है, लेकिन आत्मा निर्विकल्प है इसका क्या करोगे,
निर्विकल्प ऐसा आत्मस्वरूप, उस आत्मस्वरूप का विकल्प दुश्मन है, दुश्मन का क्या है विकल्प, तो उसका दुश्मन है। तो दुश्मन होता है वो क्या करता है, वो दुष्ट होता है हमेशा। दुश्मन कैसा होता है, तो दुष्ट होता है वो घातक होता है, क्या होता है थोड़ी अनिष्ट करने वाला होता है, नुकसान करने वाला। तीन शब्द का प्रयोग राजमल जी ने समय सार कलश टीका के 108 कलश की टीका करते हुए लिखा है। तुमने एक प्रश्न उठाया है कि जैसे अमृत आदि के परिणाम छोड़ने योग्य है, पाप के परिणाम अमृत आदि के परिणाम छोड़ने योग्य है, वैसे व्रतादि के पशु भाव रूप व्यवहार रूप परिणाम छोड़ने योग्य होगा या नहीं होगा, कि वैसे ही छोड़ने योग्य है, जैसा पाप छोड़ने योग्य है वैसा पुण्य छोड़ने योग्य है। क्यों, क्योंकि वे दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है, ऐसा दिन से बोलता है। तो पुण्य पाप अधिकार का कलश इस बात में ऐसी बात करती है, जिसको पुण्य भाव का बहुत बहुत मूल्य आ गया हो, हमेशा हमेशा करता हो, करता है, तो उसको पूजा करते, भक्ति करते, स्वाध्याय करते, दयादान करते, यात्रा करते, स्नान करते, अहिंसा पालते, इसका मूल्य आ गया हो, उसको निर्मूल्य कर देते हैं ज्ञानी, तो उसको पोसाता नहीं है, उसको दुख लगता है। वचनामृत वितरागना परम शांत रसभूर औषध जे भव रोगना कायर में प्रति कायर बोले अरे 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 ऐसा कहते हैं, हम अहिंसा पालते हैं उसका निषेध करते हैं, हम ब्रह्मचर्य पालते हैं उसका निषेध करते हैं, हम व्रत लेते हैं उसका निषेध करते हैं, हम पूजा करते हैं उसका निषेध करते हैं, क्या करते हैं तो वो कायर कहा जाती है। ज्ञानी फिर भी उसको छोड़ते नहीं, बराबर फटकारते हैं, छोड़ते नहीं।
ये स्वरक्षण का अवलंबन लिया हमने, जिनने ये स्वरक्षण का अवलंबन लिया है ऐसा ज्ञानी, जिसको आप लोग कहते हैं डॉक्टर, उचित डॉक्टर चाहिए ना, ये स्वरक्षण को जिसने अवलंबन लिया है ऐसा ज्ञानी, गौरव को मिटने के लिए ऐसा ज्ञानी चाहिए।
हाँ, गौरव को मिटाने के लिए ज्ञानी को ऐसा ही होता है, ऐसा ही ज्ञानी होगा, बाकी तो लेते ही ऐसा जाएगा। क्या बात है, क्या छह कारक का भेद मिटा दिया है, बाद में इंडिया है भारत को इंडिया है। हाँ, तो फिर विकल्प से तो कहना ही क्या, जब परलक्ष्य ज्ञान का निषेध है तो विकल्प तो रागात्मक है, उसका तो निषेध होगा होगा, और संभालित करना नहीं होता होगा। यहाँ छह कारक कुछ पहले भेद से लिया, वेद से नहीं हो गया आत्मा में तो कहकर नहीं चेतता हूँ, नहीं चेतते हुए नहीं चेतता हूँ, छो का वेद का निषेध कर दिया, नहीं चेतता द्वारा चेतता हूँ, नहीं चेतता के लिए चेतता हूँ, नहीं चेतते में से चेतता हूँ, नहीं चेतने में चेतता हूँ, और नहीं चेतता को चेतता हूँ, ऐसा छो का निर्विकल्प परिणाम में छो कारकों का भेद विकल्प नहीं रहता। ऐसे इस गाथा में परिणमन की मुख्यता से गाथा है, विकल्प की मुख्यता से ये गाथा नहीं है, परिणमन की मुख्यता से ये गाथा है। परंतु मेरे अनुभव में तो सर्व विशुद्ध परिपूर्ण शुद्ध चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र भाव हो, शुद्ध पवित्र चैतन्य मात्र भाव वही मेरा स्वरूप है, उसमें विकल्प उठाने की भी आवश्यकता नहीं।
Thank you.